ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बगिया के फूल हैं, तो फूल बच्चे कैसे होने चाहिए? फूल बच्चे किसी को दुख तो देते नहीं है। गुलाब का फूल बनना है तो दुख तो देना ही नहीं है, पर साथ साथ न रोना है, न रूसना है, न नाराज होना है, स्थिर बुद्धि रखनी है, एक रस रहना है। तो वही कहेंगे फूल बच्चे, गीता में भी है, ज्ञानी तू आत्मा के लक्षण क्या होते हैं, जो मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में समान रहता है। तो जो समान रह सकते उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो बाबा के फूल बच्चे भी स्थित प्रज्ञ हो, तो आज की बाबा की सारी मुरली पूरी धारणा की मुरली है। सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज 27/10/2025 है। मीठे बच्चे नाजुक पना भी दे अभिमान है। छुई हुई बन जाते ना, कुछ कह दिया बस नाराज हो गया, हाँ मूड ऑफ हो गई, तो इसको कहेंगे नाजुक पना। बहुत डेलिकेट है, उनसे बात करने में भी डर लगता है, पता नहीं ये भड़क ना जाए, पता नहीं इसको गुस्सा ना जाए, पता नहीं ये कुछ बोल ना दे। हाँ, तो नाजुक पना भी दे अभिमान है। रूसना रोना ये सब आसुरी लक्षण है। सब क्या है? ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। कहीं तो फट से कह देंगे तुमने मेरा अपमान किया। हाँ, अपमान किया, चलो हिसाब किताब हुआ, माफी भी मांगेंगे, नहीं तो मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगा, ऐसे भी लोग हैं। तो दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां ही देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। वायुमंडल तो नेगेटिव हो जाता है ना, एक दो की खामियां ही देखते हैं, एक दो की खामियां वर्णन करते हैं तो कैसा बन जाएगा वातावरण। तो एक दो की खामियां देखने लगते हैं क्योंकि देह अभिमान है, तब सर्विस में ढीलापन आ जाता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहां नहीं रह सकता, ये सब नाजुक पना है। ये बोल मुख से निकलना माना कांटे बनना, ना फरमानदार बनना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। आनाकानी माना बहानेबाजी, आनाकानी मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा निश्चय किया तो सब सारी जो भी रुकावटें हैं, कमजोरियां हैं, वो मिट जाती है। तो पहली पहली यही शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं। क्यों बाबा इतना जोर देते हैं देही अभिमानी बनो, हम आत्मा हैं, ये सदा समझो। क्योंकि बाबा कहते देही अभिमानी बने तभी बाप को भी याद कर सके। अगर देह अभिमान में है तो बाबा की याद भी कैसे रहेगी। देही अभिमानी बने तभी बाप की याद रह सके। वो है अज्ञान काल। दुनिया में तो क्या क्या सोचते हैं, अब अज्ञान काल है वो। ये है ज्ञान काल। अभी हम ज्ञान काल में है, अज्ञान काल में नहीं है। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सदगति करते हैं, और वो है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। इसलिए कई लोग कहते हैं ना, आप इनको भगवान कहते हैं, हम कहते हैं जिसको मनुष्य का आकार है उसको भगवान नहीं कह सकते। अब देवताएं तो सब निराकारी ही है, सॉरी, अब आत्माएं तो सब निराकारी ही है, परंतु देह अभिमान में आने के कारण अपने को आत्मा भूल गए हैं। सब आत्माएं है तो सब निराकारी आत्माएं, लेकिन देह अभिमान में आने के कारण मैं आत्मा हूं ये भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। कितना बाबा जोर दे रहे हैं इस पर। आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्म के पाप भस्म हो। और कोई उपाय नहीं, पाप भस्म करने का और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। तो बाप ने समझाया है पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है आत्मा। सीढ़ी ने भी समझाया था जो पावन थे वही पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं, पहले पहले कहाँ थी, तुम सब आत्माएं 5000 वर्ष पहले शांति धाम में पावन थी। उसको कहा ही जाता है शांति धाम, पावन धाम को कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। हाँ, हम तो थे ही पावन, पर कलयुग में पतित बने तब चिल्लाते हैं हे पतित पावन आओ। तो बाबा समझाते हैं बच्चे, मैं जो तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, ये ज्ञान किस लिए है, पतित से पावन होने का ये ज्ञान है। तो मैं जो ये ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वो सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। 5000 साल पहले दिया था, गीता में भी कुछ कुछ तो अक्षर है ना, हे अर्जुन तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो बाबा कहते हैं पतित से पावन होने का ये ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, वो सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। बाप को ही आकर के सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं, सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं है। वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं है। रिंचक कितना होता है, इतना, इतना भी नहीं है, जरा भी नहीं है भक्ति मार्ग सतयुग में। अभी बाप कहते हैं तो मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है, बननी ही है, अविश्वम्भावी है कि पावन दुनिया बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर के राजयोग सिखाता हूँ, देवी गुण भी धारण करने हैं। अब किसको हम कहेंगे ये देवी गुण नहीं है? हाँ, बाबा कहते हैं रूसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव है। अगर कोई रूसता है, रोता है, याद करे बाबा के माँ वाक्य, ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है। सब बच्चों को सहन करना है, नाजुक पना नहीं होना चाहिए। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, ये भी नाजुक पना है। बाबा जहाँ भी भेजे वहाँ रहना है। आजकल ये कहाँ चलता है, तो इसीलिए दादियों को पूछना पड़ता था आप कहाँ जाना चाहती हो। ऐसे नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ नहीं जाऊंगी, पहले ऐसे होता था। अभी उनको कहना पूछना पड़ता है, नहीं तो कहेंगे मैं तो नहीं जाऊंगी। तो बाबा कहते इनका ये नाजुकपना है, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, ये नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है, गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है, दे अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है। इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझाते हैं ये भी ड्रामा अनुसार होता है। अब बाबा तो यही कहेंगे ये भी ड्रामा अनुसार होता है, पर सुधरना भी तो है ना। ड्रामा कहकर के छोड़ थोड़ी देना है, सुधरना भी तो है ना। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स आदि होती है, बाढ़ आती है, तो वह कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। मिलिट्री आ जाती है तो शूट एट साइट, हाँ फिर सब घबरा जाते, एकदम रुक जाते हैं ना। मिलिट्री आ गई, केवल पुलिस है तो सामना करेंगे, मिलिट्री का सामना नहीं कर सकते। फ्लड्स होती है व कुछ हंगामा होता है तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। कहीं भूकंप आया, बाढ़ आई तो फिर मिलिट्री वाले वो भी काम करते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है ये मिट्टी सारी भरो, अगर कोई न आया तो गोली के मुंह में, गोली के मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर तो मानना ही पड़े। तो बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर हो जाना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, मिलिट्री माना, जैसे ऑर्डर मिला तुरंत वो ऑर्डर स्वीकार कर उसी अनुसार करना चाहिए। तो नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वो फिर दिल पर नहीं चढ़ते, आज्ञाकारी नहीं, कहना नहीं मानते, तो वो फिर दिल पर कैसे चढ़ेंगे। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहां बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, अब सर्विस पर तो जाना पड़ेगा ना, कि 10 माइल दूर है मैं तो वहां नहीं जाऊंगी, यहां तो बाबा कहते नहीं जाना पड़ेगा। खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है, बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर बड़े से बड़ी गवर्नमेंट भगवान की, अब उसका ऑर्डर तो मानना पड़ेगा, अगर नहीं माना तो इस बड़ी गवर्नमेंट का राइट हैंड कौन है, धर्मराज, हाँ ये राइट हैंड है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है, उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, सिविल आईज, हाँ ये आंखें सिविल माना शुद्ध पवित्र हो। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए, बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। चकनाचूर आप सोचो, कोई 5वें मंजिल से गिरा तो क्या हालत होगी, हड्डियां हड्डियां पसलियां सब चूर चूर हो जाती है। अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे, 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा, विघ्न पड़ जाएगा, नहीं पा सकेंगे राजाई। तो बाप कहते हैं मुझे बच्चों के बिगड़ तो कभी कोई जान न सके, कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। ये है बिल्कुल नई नई बातें, ये है गीता का युग, भगवान आए हैं गीता का ज्ञान सुनाने, ये गीता का युग है। परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है, हाँ क्योंकि उन्होंने कह दिया भगवान ने तो द्वापर अंत में गीता सुनाई, वो संगम तो उस रूप से वर्णन ही नहीं है। परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है, गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना, कि राजयोग से तो राजा ही मिली तो संगम होगा ना। परंतु किसकी भी बुद्धि में ये बातें नहीं है, अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्यों को है कौन सा नशा, बाबा के बच्चों को ज्ञान का नशा है, और मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं क्या कहते हैं कि भगवान भी आ जाए ना तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बाबा कहते हैं किसी से भी भक्ति छुड़वानी नहीं है, अपने आप छूट जाए वो और बात है, लेकिन तुम किसको नहीं कह सकते हो भक्ति छोड़ो। तो भगवान भी आ जाए हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे, ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तुम भी तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती है, माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है, पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए, बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, बाबा ने हुक्म किया है करना ही है, ये मैं नहीं कर सकता, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है, तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की ये श्रेष्ठ मत है, वो है ही सदगति दाता, दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे, दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनसे भी देखो ब्रह्मा बाबा से भी बाबा कहते देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है, मम्मा ऊंच चली गई है, श्री नारायण से श्री लक्ष्मी ऊंची है। कैसे ऊंची है? पहले श्री लक्ष्मी का नाम लिया जाता है फिर नारायण का नाम लिया जाता है, तो लक्ष्मी नारायण से ऊंची हो गई। तो बाबा कहते हैं इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंची चली जाती है, तो गायन भी है ना कि फीमेल को आगे रखा जाता है। तो सतयुग त्रेता में फीमेल को आगे रखते हैं। पर जैसे द्वापर शुरू हुआ पुरुष प्रधान समाज आ गया, तो फिर फीमेल पीछे रह गई और मेल आगे हो गया। तो फीमेल को आगे रखा जाता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। केवल राजा रानी के लिए नहीं है, लक्ष्मी पहले नारायण बाद में, सारी प्रजा के लिए भी यही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है, तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो अब है संगम। रावण राज्य खत्म हो रहा है, राम राज्य आ रहा है, यह है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था, तो चेंज कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। रावण राज्य से राम राज्य कैसे हो जाता है बाबा कहते ये दुनिया नहीं जानती। एकदम प्रजा का प्रजा पर राज्य इस समय, और सतयुग आया और राजाई चालू हो गई। तो कैसे राजाई चालू हो गई एकदम प्रजा का प्रजा पर राज्य से, बाबा कहते ये कोई नहीं जानते। सभी घोर अंधियारे में है, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है, घुटनों पर चल रहा है, कलयुग छोटा बच्चा है। तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे, वो ऐसे नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण क्या नहीं कहेंगे? वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हे मेरे रूहानी बच्चों, श्री कृष्ण थोड़ी कह सकता है। ये तो ये भी लिखना चाहिए कि रूहानी नॉलेज फुल बाप, स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं, ये लिखना चाहिए सब जगह। तो बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य है देह अभिमानी, मैं आत्मा हूँ ये कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं किसको किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अब आत्मा समझना है, पर मैं आत्मा कभी लीन नहीं होती हूँ। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको क्या कहेंगे ब्लाइंड फेथ अंधश्रद्धा, तो उसको क्या कहेंगे अंधश्रद्धा वश पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको तुम उसको क्या कहेंगे, हाँ बाबा कहते हैं गुड़ियों की पूजा, कि गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, शादी भी कराएंगे फिर घर भी बनाएंगे, सब ऐसे करते हैं फिर फोड़ देते हैं। तो ये तो हो गया गुड़ियों की पूजा। तो गुड़ियों की पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। अब ज्ञान तो आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है। ये दुनिया ही बदलती है, कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। न भक्ति होती, न रावण होता है, न पतितपना है। बाबा कहते हैं सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां है ही पूज्य, बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा भी क्यों टेकते हो। बाबा की आज्ञा के माथा टेकते हैं, तो बाबा कहते हैं माथा भी क्यों टेकते हो, आधा कल्प तो तुमने माथा भी घिसाया। माथा टेकते टेकते साष्टांग नमस्कार करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, तो सिर भी नीचे करते हैं, तो माथा टेकते टेकते मात अल्प आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गंवाए, मिला कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है, माया ने माथा मोड़ लिया। किसी की बदनामी करनी है ना तो उसका सिर के बाल ही काट देते हैं, माथा मोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं माया ने एकदम माथा मोड़ लिया है, कंगाल बना दिया है, फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं, माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं, भारत के प्रति भावना बहुत बढ़ती जा रही है ना अभी, तो बाबा कहते हैं कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं, और देश वाले भारत का कितना अभिमान रख रहे हैं, तो मान रख रहे, पर भारतवासी अपने देश का कितना मान रखते हैं। बाबा कहते हैं ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं, वो और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है, और धर्म वाले सुख भी थोड़ा पाते हैं दुख भी थोड़ा पाते हैं। सत्युग त्रेता की भेंट में द्वापर कलयुग में तो सुख बहुत कम है ना, पर दुख भी कम है क्योंकि लेट आते हैं, तो दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को तो सुख भी बहुत है तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते, इसीलिए भारत पर जितने देशों ने आक्रमण किया है ना, उतना और किसी देश पर नहीं आक्रमण किया है, क्योंकि भारत से धन लूटने का ही उनको था, तभी आक्रमण किया, सब ने यही किया। तो इसलिए देखो भारत की कितनी चीजें अभी विदेशों में है, लंदन में तो बहुत कुछ है, भारत से बहुत लूटा है उन्होंने, तो अभी देखो धीरे धीरे वापस लौटा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं तो और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान थे, शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक तो भारत होता है, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं। हाँ, जब धर्म पिताएं आए उस समय थोड़ी कोई वो देश वो धनवान था, बिल्कुल का धनवान नहीं था, ये तो फिर बाद में धीरे धीरे ये यूरोप में या एशिया में ये सब धीरे धीरे धनवान बनते गए। तो पहले थोड़ी धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, सबसे ज्यादा धनवान था फिर सबसे ज्यादा भिखारी भी भारत बना है, अंधश्रद्धालु भी भारत है, अंधश्रद्धालु कितने, अंधविश्वास भारत में जितना है उतना और देशों में नहीं है, अंधश्रद्धालु भी भारत है, ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैंने जिसको हैबिट बनाया वो हेल बन गया है, मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर के मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं, बड़े कड़े हैं विकार, क्रोध कितना कड़ा है। हाँ सोचो तो सही, क्रोध कितना कड़ा है, क्रोध में आकर मनुष्य क्या नहीं कर लेता है, क्रोध कितना कड़ा है। तुम्हारे में भी क्रोध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो, मीठे शांत, जोर जोर से बोलना भी नहीं चाहिए, ये भी तो आवाज करने से शांति भंग होती है ना, तो बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। ये भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते, सब तो ऐसे नहीं बनेंगे, या कोटों में कोई निकलते हैं बाबा के बच्चे, राजाई पद पाने वाले कितने होंगे, कोटों में कोई में और कोई में भी कोई राजाई पद पाने वाले। तो बाघ कहते हैं, मैं आया हूं तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी आठ रत्न मुख्य गाए जाते हैं, आठ रत्न और बीच में है बाप हीरा, हीरा बीच में, बाकी आठ रत्न चारों तरफ हीरे के, आठ रत्न और बीच में है बाप, आठ है पास विद ऑनर्स, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, वो आठ में भी नंबर है, ऐसे नहीं सब समान है, क्योंकि गद्दी तो एक को ही मिलेगी ना एक समय पर, इसलिए बाबा कहते हैं सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, दे अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है, देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, भक्ति मार्ग में भी पक्के ब्रह्म ज्ञानी, एकदम ब्रह्म में उनको लीन होना है, बस वही उसी का ही वो ध्यान करते हैं, तो कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उन्हों का भी ऐसा होता है, क्या होता है, वो बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं, इतने ब्रह्म में जैसे खो जाते हैं, तो फिर उनको पता चलता है अभी हम जब ये देह त्याग करेंगे, तो स्व इच्छा से भी देह त्याग कर लेते हैं, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। और सचमुच जब कोई ऐसे महान आत्मा कोई ऐसे शरीर छोड़ते हैं तो कितना सन्नाटा हो जाता है एकदम, हाँ, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं वो ब्रह्मज्ञानी भी। रात को तो मनुष्य बहुत गंध करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं, बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलफ का परिचय दो, पहले अलफ और फिर बे, हाँ, पहले परमात्मा का परिचय दो, फिर परमात्मा से क्या वर्षा मिलता है वो बताओ, तो पहले अलफ और फिर बे। बाप तो एक ही निराकार है, बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, वही बाप कहते हैं, हाँ, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं वही बाप कहते हैं। अब माम एकम याद करो, देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे फिर किसको हिम्मत ही नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की, भाई ये मैंने नहीं कहा ये तो भगवान ने कहा है, तो फिर हिम्मत कैसे होगी उनकी कुछ प्रश्न उत्तर कहने की करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। जब तक बाप का परिचय पक्का बुद्धि में नहीं है तब और बातें बाबा कहते नहीं समझाओ, तो फिर बताओ 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम तीक तीक करते हो, ये तीक तीक भी सिंधी शब्द है, हम इधर की बातें उधर की बातें वो बातें, ज्ञान जो निज ज्ञान है वो तो सुनाते ही नहीं है, पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हैं। तो बाबा कहते ये तीक तीक हो जाती है, बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम तीक तीक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। फिर इतना सारा एक घंटा पता नहीं क्या क्या सुनाया, फिर उनसे अगर पूछो ना अभी आप कौन हो, कभी नहीं कहेंगे मैं आत्मा हूँ, पता नहीं क्या क्या सुन लिया और बातें, तो मैं आत्मा हूँ ये जो निज ज्ञान है वो तो समझा ही नहीं, तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। गले ही घुट जाते, कितना सुनाते रहते पर निज ज्ञान जो भगवान देते हैं वो नहीं सुनाते हैं, उनमें वो टिक टिक करते रहते तो गले ही घुट जाते हैं। तो पहली बात तो अलफ की उठाओ, टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए, सिंपल रीति, ताकि उसकी बुद्धि में बैठे। नहीं तो क्या, एक घंटा बोल दिया फिर आखिर उनसे पूछो क्या समझा। डब्बे में ठिकरी, बाबा कहते हैं डब्बे में ठिकरी डालो ना, लकड़ी ऐसे या मिट्टी के टुकड़े डालो खाली डब्बे में, ऐसे आवाज तो बहुत हुआ लेकिन वो कोई काम का नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों की मदद देनी पड़े, समझे समझ। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। चलो म्यूजियम तो बना लिया लेकिन उसमें गाइड्स अच्छे नहीं है तो फिर बाबा कहते थे तो म्यूजियम का से पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे, समझाने वाले भी अच्छे अच्छे होने चाहिए। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना चाहिए। ये तो उस समय था, तो उस समय तो हैंड्स इतने नहीं होते थे, लेकिन अभी तो सब सेंटरों पर इतने हैंड्स हैं, सब इतने बिजी हो जाते हैं। तो थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। बाबा बड़ी बहनों को कहते तुम लोग जाओ हम सेंटर पर किसी को बिठाओ और आप सेवा पर जाओ। तभी हम देखते ना हमारी बड़ी बहनें कितना चारों ओर निमंत्रण मिलता रहता है, जाते रहते हैं। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है, जो आप कहीं सेवा पर जाओ और पीछे कोई सेंटर नहीं संभाल पा रहा है, तो बाबा कहते हैं हाँ तो क्या बाबा समझेंगे, तो बाप समझेंगे ये कोई काम का नहीं, किसी को आप समान बनाया ही नहीं, ये कोई काम का नहीं, ये सर्विस नहीं की, ये सर्विस नहीं की। बाबा को लिखते हैं बाबा सर्विस छोड़ कैसे जाएं, कौन रहेगा हमारे सेंटर पर, कौन संभालेगा अगर मैं कहीं जाती हूँ। तो बाबा को लिखते सर्विस छोड़ कैसे जाएं, अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम के, बाबा ने हुक्म किया तो झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाबा ने हुक्म किया और झट भागे। हमारी दादियां तो ऐसे ही थी, बाबा कितना उनको हुक्म करते थे बच्ची यहाँ जाओ यहाँ जाओ। बड़ी दादी तो बहुत अनुभव सुनाती थी, दादी जानकी भी सुनाती थी। बाबा ने कहा बच्ची वहां जाओ, हाँ वहां जाओ, तो जाना पड़ता था। चंद्रमणि दादी को भी बाबा कहते थे। ये सब हमारी दादियां ऐसे नहीं एक ही जगह रही, कितना ट्रैवल करती थी। और अभी देखो बड़ी बहनें हैं कितना ट्रैवल करती है। तो बाबा कहते हैं तो वो उस समय लिखती थी बाबा सर्विस छोड़ कैसे जाएं। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम के, बाबा ने हुक्म किया झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उसको कहा जाता है। बाकी तो सब है कौन, घोड़े सवार प्यादे, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको अपसमान नहीं बनाया है तो क्या करते थे, इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। अब बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े होशियार लोग आते हैं, अब उनसे बात करने वाली ऐसे कोई अल्लड़ हो वो बिल्कुल उसको बोलना भी ना आए, तो बाबा कहते तो डिसर्विस होगी। जिससे बात करने की भी अकल चाहिए, मुरली भी जरूर रोज पढ़नी अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया, अगर मुरली नहीं पढ़ी या मुरली नहीं सुनी गोया एब्सेंट पड़ गई, और एब्सेंट पड़ गई तो ये तो एब्सेंट, तो फिर वहां राजाई से भी एब्सेंट ऐसे ही कहेंगे, गैर हाजिरी हो जाएगी तो थोड़ी वो राजाई मिलेगी। तो गोया एब्सेंट पड़ गई, अब तो तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। कितना काम है बाबा ने दिया, सारे विश्व पर घेराव डालना है। हाँ बाबा ने कल भी कहा ना, तुमने थोड़ी बाबा को ढूंढा, बाबा ने तुमको ढूंढा। तो किस कोने में कौन बच्चे थे, सारी दुनिया देखो अभी बाबा के आते ना, विदेश के बच्चे कौन से कोने में थे और वहां भी बाबा के बच्चे गए और उनको बाबा का बच्चा बनाया। मैं कल भी एक कोई मिलने के लिए आई, वो कहां किसी कोने में थी, दुनिया के किसी कोने में, पर वहां से वहां भी उनके पास पहुंच गए ब्राह्मण बच्चे और वो बाबा की बच्ची बन गई। भले वो एक ही है उस देश में, लेकिन बाबा की बच्ची बन गई और वो ही फिर सेवा करती है। तो बाबा कहते हैं, मुरली नहीं पढ़ी गोया एब्सेंट पड़ गई, तो तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना, पतित दुनिया को पावन बनाना ये घेराव डालना है ना, पतित दुनिया को पावन बनाना ये घेराव डालना है ना, सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। कितना बड़ा काम बाबा देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है, कभी भी क्रोध नहीं करना है, अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है, सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है सारे विश्व को। तो बाबा ने कोने कोने से बच्चों को निकाला, हम बच्चे तो बाबा को ढूंढ नहीं सके। हाँ बाबा ने कल भी कहा, तो सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थिति में सदा सुख व संतोष की अनुभूति कराने वाले महावीर भव। बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थिति में सदा सुख व संतोष की अनुभूति कराने वाले महावीर भव। सदा बाप की याद में रहने वाले हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं। अगर बाबा की याद है तो हर परिस्थिति में सदा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव होती है। राई अर्थात कुछ नहीं, चाहे परिस्थिति असंतोष की हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। दुख की परिस्थिति में भी सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। कुछ भी हो जाए नथिंग न्यू के साथ साथ बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है, फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपना दैवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अव्यक्त इशारे, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो के अंतर्गत, जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है, विज्ञान की जो भी चीजें बनी है वो अगर बिजली न हो या बैटरी न हो तो कैसे चलेगी, तो जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है, अगर कंप्यूटर भी चलता है तो कंप्यूटर माइट है, बहुत कुछ है कंप्यूटर के अंदर, वो माइट है लेकिन आधार तो लाइट है। अगर बिजली नहीं है तो कंप्यूटर भी कैसे चलेगा। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। जब वो प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, आत्मा की अभी अपनी लाइट है, परमात्मा की लाइट और फिर प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता है, बहुत कुछ प्रयोग हो सकता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हमारे बीच हमारी कला बहन आई है। कला बहन उठो। मोहिनी बहन, मोहिनी दीदी की राइट हैंड है कला दीदी, हाथ उठो, सबको दिखाओ अपना चेहरा। देखो मोहिनी दीदी इतना समय यहाँ रही, पीछे कला बहन सब संभालती है, और जहाँ भी जाना होता है कला बहन कितना ट्रैवल करती है, और जो न्यूयॉर्क के पास जो पीस विलेज है वो संभालती है, पूरा इनके ऊपर ही है सारा, इतनी सेवाएं हो रही है अमेरिका में, कैसे होती है। तो ये अभी मोहिनी दीदी के बाद ये संभाल रही है, और मोहिनी दीदी यहाँ भारत में रह के विश्व की सेवा कर रही है ना, तो इसलिए बहुत अच्छा है। हम सब कला बहन का भी प्यार से स्वागत करते हैं, थैंक यू। और हमारी गोपी बहन तो करती रहती है देश की भी सेवा, विश्व की भी सेवा। गोपी बहन सब जानते हैं आपको, आप भी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ तो देखो, तो सबको दिखाओ, हिलाओ, भले आप यहाँ है पर कई कईयों को पता नहीं, ये भी विश्व की सेवा करती रहती है, लेकिन मधुबन में इनको बांध के रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो कारोबार चलता है उसमें ये बहुत होशियार है, तो कैसे सबसे मिलना करना, कैसे इतना जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतना जो व्यवस्था है उसमें पूरी मददगार है। चलो अभी हम बाबा को याद करेंगे, और डबल विदेशी भाई बहने जो आए हैं, हाथ खड़ा करें डबल विदेशी भाई बहने, वो सब योग के बाद सब बैठे रहेंगे, आपको आज का प्रोग्राम देंगे।